वचनों का कार्यक्रम है, कृपया प्रकाश करें।
मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु में हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने।
बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विचार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ भी कर रहे हैं कि जो हम अपने जीवन में विचार करते हैं उसे अपने आचरण में भी लाएं। हमारे जीवन में जब विचार ही नहीं होगा तो वह आचरण में कैसे बदल पाएगा। जरूरी है कि हम विचार करें। सबसे पहला और प्रमुख विचार यही है कि मेरे आत्मा का स्वभाव वीतरागता है और यह जो देह है वह जड़ है, मेरे से भिन्न है। ऐसा जो विचार अपन अपने भीतर करते हैं उससे हमारी दृष्टि निर्मल होती है। हमें संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का एहसास होता है। निरंतर इस तरह का चिंतन यदि हमारे भीतर चलता रहता है कि मैं आत्मा वीतराग स्वभाव वाला हूं और यह मेरी देह जड़ स्वरूप लिए हुए है, मेरे से भिन्न है, मैं अपने व्यवहार में भी इस बात का एहसास करूं कि मैं इसके सुख दुख में हर्ष विषाद न करूं और यह सोच मेरे भीतर आत्मज्ञान में कारण बनता है। जैसे ही यह बात हमारी दृष्टि में स्पष्ट हो जाती है हमारे ज्ञान में समीचीनता आने लगती है, फिर हम जो भी करते हैं वह सब ठीक ढंग से होने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को ठीक ढंग से जिए तो ऐसा नहीं है कि जीवन अच्छा ना बन सके। यदि हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते हैं तो उसका स्पष्ट सा कारण है कि हमारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं है, हमारा ज्ञान अभी आत्मज्ञान नहीं बना है। हमारे भीतर श्रद्धा तो है लेकिन वो समीचीन नहीं है, हमारे भीतर ज्ञान तो है लेकिन वो समीचीन नहीं है जो हमारे क्रियाओं को ठीक कर सके, हमें अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए जागृत कर सके। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि अपने राग द्वेष जो कि हमारे विकारी भाव है, हमारा निजी स्वभाव नहीं है, उसे कैसे मैं हटाऊं, यह बात एक सज्जन पुरुष निरंतर विचार करता है और उस राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सारा आचरण करता है। सुबह से शाम तक वो सारी क्रियाओं में ये सावधानी रखता है कि मेरी क्रियाओं के माध्यम से राग द्वेष ना हो। अवसर तो सैकड़ों आएंगे सुबह से शाम तक जिसमें कि राग द्वेष की संभावनाएं अधिक है, लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि राग द्वेष और वृद्धिंगत हो। इस तरह की सावधानी, इस तरह का विवेक उसके भीतर आपको आप जागृत हो जाता है। राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना करता होती अनपेक्षितार्थ वृत्ति कहां पुरुषा से उत्ते नृप्ति। हम अगर बाह्य में पांच पापों से बचने का पुरुषार्थ करते हैं और अहिंसा आदि पांच व्रतों को अंगीकार करते हैं, उसका उद्देश्य ही यह है कि मैं अपने अंतरंग में राग द्वेष को हटाकर वीतराग भाव का एहसास कर सकूं। एक व्यक्ति किसी धनवान की या राजा की सेवा करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि धनवान की सेवा करने से, राजा की सेवा करने से मैं भी धनवान के जैसे या राजा के जैसे धन संपत्ति और वैभव को प्राप्त कर लूंगा। एक अपेक्षा उसके भीतर निरंतर सेवा के साथ बनी रहती है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने व्रत नियम संयम का पालन करता है उसके भीतर ये भावना निरंतर बनी रहती है या कि बनी रहना चाहिए कि मैं हिंसा से बच रहा हूं, अहिंसा का पालन कर रहा हूं, तो उद्देश्य क्या है। मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं चींटी पर पैर नहीं रखता हूं, मैं पानी छान के पीता हूं, मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं पूजन करता हूं, मैं महाराज को आहार देता हूं, मेरे से जितना बनता है उतना धार्मिक क्रियाएं करता हूं, लेकिन इन सब के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। निरंतर ये बात उसके भीतर बनी रहती है और एक ही उद्देश्य है, मेरे वीतराग भाव जो कि मेरे स्वाभाविक है उन्हें मुझे प्राप्त करना है, इसलिए ये सब क्रियाएं मैं कर रहा हूं। ये सावधानी, ये सजगता निरंतर बनी रहती है। आचार्य भगवंत श्रावक के लिए और साधु के लिए दोनों के लिए बाह्य में आचरण दोनों को भिन्न भिन्न अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने के लिए उपदेश देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, चाहे अहिंसा का पालन अपनी शक्ति के अनुसार स्थूल रूप से शाबक करे या पूर्ण रूप से मुनिजन करे, उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक ही है कि मेरे भीतर वीतराग भाव आवे, क्योंकि कषाय के अभाव का नाम ही चारित्र है। वीतरागता ही और समता भाव ही, अंतरंग की परिणति की निर्मलता ही चारित्र है। मुझे इस वही आचरण के द्वारा उसे ही प्राप्त करना, ऐसा विचार सुबह से शाम तक क्रियाओं के दौरान उसके बना रहता है। पांच प्रकार के पापों का उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया है, सब परिचित हैं उससे। छोटे छोटे बच्चों को भी पाठशाला में सिखाया जाता है, हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्या या पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संज्ञस्य चारित्रम्। पांच प्रकार के पापों से मुक्त होने का नाम भी चारित्र है। बाह्य में वह दो प्रकार का है, सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंगानाम अनगारानाम विकलम सागारानाम ससंगानाम। जिन्होंने अभी घर गृहस्थी में परिग्रह रख रखा है, घर गृहस्थी के कामों में लगे हुए हैं, वे क्या करें? वे इस पांच पापों का पूर्णतः त्याग करने में सक्षम नहीं है, तब फिर दो तरह से उन पांच पापों के त्याग की चर्चा करी कि भाई चलो स्थूल रूप से पांच पापों का त्याग करो, विकल रूप से अर्थात आंशिक रूप से तुम अहिंसा आदि का पालन करने में सक्षम हो तो उतना तो करो, और जो सकल चारित्र का या अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करते हैं वो ग्रह के त्यागी मुनि जन, उनके लिए इस चीज का प्ररूपण किया। शावक को इतना ही नहीं, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपन तो सोच रहे थे कि बस पूजा कर ली, आहार दे लिया, थोड़ी दो चार लाइनें साष्ट की बांच ली, भोजन की थाली पर देख लिया कि सब ठीक ठाक है, मर्यादा को है कि नहीं, हो गए धर्मात्मा। ये भैया इतने में नहीं होंगे, अब और आगे बढ़ने पर इतना तो हो गया, उनसे तो अच्छे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, यहां तक तो अपन जीत गए, यहां तक तो अपन आ गए, अब भी ऐसे आचार्य महाराज और हमें आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि थोड़ा और अपने आप को इन क्रियाओं के माध्यम से अपने भीतर जागृति ला करके वितरागता पर स्थित करो। 12 प्रकार के व्रतों का पालन जो करे उसे ही शावक कहते हैं। चतुर्विध संग में अपन शामिल हो, जो कि भगवान ऋषभ देव ने मुनि आरिका शावक शाविका ये चतुर्विध संघ की स्थापना करी, उसमें वही शामिल हो सकता है जो पूर्ण रूप से महाव्रतों को अंगीकार करने वाले मुनिजन हैं, जो उपचार से महाव्रतों को अंगीकार करके अपने आत्म कल्याण में लगी हैं वो माता जी हैं, आरिका जी हैं, और जो मुनि महाराज के महाव्रतों को निरंतर पाने की भावना भाते हैं लेकिन क्या करें शक्ति नहीं है 12 व्रतों का पालन करते हैं, उन्हें शावक कहा है। और इसी तरह आरिका माता जी का आदर्श जिनके सम्मुख है, ऐसे आदर्श को सामने रखकर महाव्रतों को अंगीकार करने की भावना रखते हुए जो अपने व्रतों का 12 व्रतों का पालन करती हैं वो शाविकाएं हैं। ऐसे चतुर्विध संघ में अपन तब शामिल होंगे जबकि 12 व्रत अपन धारण करेंगे। छोटी छोटी चीजें तो अपन ने कर ली, अब थोड़ा और आगे बढ़े, ज्यादा कठिन नहीं है। लगता जरूर है कि 12 व्रत और ये दूसरी प्रतिमा बहुत कठिन है, हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें अंतरंग में कि पांच पापों का स्थूल रूप से त्याग करना, दिग्व्रत देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत ये धारण करना, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इस प्रकार 12 प्रकार के व्रतों को धारण करके और हम चतुर्विध संघ में शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयत्न तो करना पड़ेगा। हम सामान्य गृहस्थ से उठ करके कैसे शावक तक पहुंच जाएं? अभी कम से कम शावक ही बन जाएं, ठीक ठीक और निरंतर भावना रखें कि हम शावक बन करके और अभ्यास करके धीरे धीरे महाव्रत भी अंगीकार कर सकेंगे। एक दिन को ही सही, मैं मुनि महाराज के जैसी चर्या करके अपने जीवन को समाप्त करूं, ऐसा भाव व्यक्ति के भीतर भले ही ना बन पाए मुनि, लेकिन एक शावक के भीतर ऐसा विचार निरंतर चलता रहता है। इतना आनंद उसे अपने 12 व्रतों के पालन करने में आता है कि विचार करता है कि देखो, जब हम 12 व्रत का पालन कर रहे तो इतना आनंद है, मैं तो महाव्रत अंगीकार करूं, वो तो शरीर की मेरी सामर्थ कमजोर है, वरना तो मैं मुनि बन के और अपना आत्म कल्याण करता, ये तो आनंद का मार्ग है, सुख का मार्ग है, आत्म सुख इसी से मिलेगा, ऐसा विचार करता है निरंतर। कठिन है, हमने कर पे हैं, ऐसे झगड़े में नहीं पड़ता, वो तो निरंतर भावना भाता है कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। आचार्य भगवंतों ने 5 पापों में से हिंसा को भी एक पाप माना। कदम कदम पर गृहस्थ जीवन में हिंसा के सैकड़ों अवसर आते हैं। 4 प्रकार की हिंसा जो गृहस्थ के जीवन में संभव है, उसका उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया। मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का विचार तक ना करूं, मारूं भी नहीं, या कि दूसरे से कहकर उसे पीड़ा भी नहीं पहुंचाने का भाव रखूं, ऐसा संकल्प शावक के जीवन में है तो उसके संकल्प हिंसा का त्याग है। हम तो साफ सुथरे बने रहे, दूसरे को कह करके तुम उनके लिए 2 तमाचे मार के आ जाना, ये क्या चीज है? ये आतंक फैलाना क्या चीज है? ये सिर्फ संकल्पी हिंसा है जो कि अपने को गृहस्थ भी नहीं रहने देती। एक गृहस्थ के भी संकल्पी हिंसा का त्याग है, और अपन संकल्पी हिंसा करके अपने गृहस्थपने को भी, अपने मनुष्यपने को भी छोड़ देते हैं और पशु जगत में उतर के आ जाते हैं। बताइए, विचार करिए, विरोधी हिंसा तो अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए शावक को करना ही पड़ती है। मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ प्रयत्न करूं, ऐसा प्रयत्न तो करता ही है। घर गृहस्थी के काम धंधे में, घर गृहस्थी के कामों में होने वाली आरब्धी हिंसा भी उसे करना पड़ती है। अपनी आजीविका के लिए उसे व्यापार व्यवसाय करना पड़ता है, जिसमें उद्योग में उसके हिंसा होती ही है। सो विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा को तो शावक के लिए, गृहस्थ के लिए क्षम माना है कि चलो कोई बात नहीं, इसको भी छोड़ना है, लेकिन अभी छोड़ नहीं पा रहे हो, एक तो छोड़ो कम से कम। संकल्पी हिंसा उसमें क्या रखा है? चीटी चली जा रही है, मैं इसको मार दूं, पैर रख दूं, ये ठीक है क्या? ये तो मोटा मोटा हिसाब है। ठीक से सब कुछ क्यों चल रहा है? मैं इनके लिए उपद्रव करूं ताकि ठीक से नहीं चले, ये क्या चीज है? यह भी तो संकल्पी हिंसा का ही एक भेद है। ऐसा नहीं समझना कि मालूम नहीं है, मालूम है। आचार्य भगवंतों को हमारे दुशील के बारे में मालूम है कि कितना हम अपने स्तर से नीचे गिर सकते हैं, कितना हम पतित हो सकते हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, सब समझने के बावजूद भी। ऐसा ज्ञान हमने कितनी बार अर्जित किया है जिससे कि हम अपने आप को ज्ञानी होने का अहंकार कर लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान से शून्य ही रह आते हैं, विवेक अपने भीतर जागृत नहीं हो पाता। सो आचार्य भगवंत अपन पे कृपा करके और कहते हैं कि भैया, घर गृहस्थी में रह करके कम से कम संकल्पी हिंसा तो छोड़ो, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का भाव तो मत रखो, ना दूसरे से पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेरित करो दूसरे को पीड़ा हो जाए तो उसकी समर्थन भी नहीं करो, का अच्छो भाव, अच्छे घले तुम्हें, अच्छे अच्छे पिटे, ठीक किया हमने, ये इस तरह इस तरह का भाव तो हमारे लिए संकल्पी हिंसा में ही ले जाने वाला है। अहिंसा तो किसी जीव को भी तकलीफ ना पहुंचाने में ही है। सब जीवों के प्रति प्रेम भाव अपने भीतर रहे, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन इज द नॉन वायलेंस। सब जीवों के सुरक्षा का विचार, सब जीवों से प्यार, ये है अहिंसा। हम किसी जीव को नहीं मारते, इतने मात्र से तो हमारी अहिंसा अधूरी रहेगी। हम किसी जीव को बचाने भी नहीं दौड़ते हैं अगर, तो हमारी अहिंसा अभी थोड़ी और बढ़ाना पड़ेगी। विनोबा ने लिखा कि हम किसी जीव को नहीं मारते, ये तो बहुत शाबाशी का काम है, लेकिन हम किसी जीव को बचाने नहीं दौड़ते हैं, यह तो और हमें करना पड़ेगा, क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव होना ही अहिंसा है। किसी को नहीं मारना भी अहिंसा है, लेकिन अंतरंग में ऐसे भाव आवे कि मैं सबकी रक्षा करूं। सो तो डर की वजह से भी कि भैया कचू होने जाए, इसे अपन मार पिट्टी नहीं करते हैं, अपनों कचुआ है इतने हो जाए, सो बच के करत, सो ऐसी जहां अहिंसा ने कहा है, प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में दया का, हिंसा और अहिंसा का विचार हो, करुणा का भाव हो, तब अहिंसा घटित होगी। अपन को अपने जीवन में झांक करके देखना चाहिए, जहां जहां इस प्रकार दूसरे को पीड़ा में डालने का विचार मेरे भीतर आ जाता है, मैं उसे जीतने का प्रयास करूं। अनादिकाल से मैं यही तो करता आया हूं। एक जीवन मुझे मिला हुआ है और उस जीवन का भी मैं लाभ नहीं लूं तो यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा विचार करके मैं अपने मनुष्य जीवन का लाभ लेने के लिए व्रतों को अंगीकार करूं और अंतरंग से करूं, मात्र वाही में व्रतों का दिखावा ना करूं। थोड़े से वाही आचरण को करके ही मैं संतुष्ट ना हो जाऊं, मैं अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहूं। बहुत प्रकार की हिंसा होती है, अपन थोड़ा सा विचार कर लें कि ये तो अपन से हो ही जाता है अज्ञानता की वजह से, हमें ज्ञान प्राप्त करके उस अनावश्यक हिंसा से भी बच जाना चाहिए। दो तरह की अहिंसा अपने जीवन में पालन कर सकते हैं, दो तरह से अपन हिंसा भी कर लेते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से और एक सामाजिक रूप से भी। इस तरफ ध्यान नहीं जाता, गांधी जी ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के बीच में रखी कि भैया आपने व्रत नियम संयम किया, आपने किसी जीव को नहीं मारा, आपने कषाय नहीं करी, तब आपकी व्यक्तिगत अहिंसा होगी। किसी जीव को अकेले मारने से बचा लिया, इतने में नहीं, मैंने कषाय भाव भी नहीं किया, तब हमने अहिंसा का पालन किया, ये तो व्यक्तिगत हो गया। ऐसे ही मैंने किसी दूसरे जीव की क्षति नहीं करी, दूसरे को पीड़ा पहुंचाई नहीं, ये मेरी सामाजिक अहिंसा कहलाएगी। लेकिन ना हम व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में अहिंसा ला पा रहे हैं, ना सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा का पालन कर पा रहे हैं। एक राष्ट्रीय चारित्र भी है, एक तो चारित्र का पालन सुबह से शाम तक अपनी क्रियाओं में अपन करते हैं अपने जीवन के लिए, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी अपने भीतर में हो, तब अपने जीवन में वास्तव में अहिंसा आएगी। ऐसा विचार अपन को करना चाहिए। जरा सा विचार करें कि कितने तरह से हिंसा हो सकती है, कितने तरह से अपराध हो सकता है। वैसे तो प्रमत्त योगात प्राण वप्रोपणम हिंसा, जहां जहां मेरे भीतर प्रमाद आया, राग द्वेष परिणाम हुए, वहीं पर हिंसा हो गई। राग द्वेष परिणाम का नाम ही हिंसा है, राग द्वेष योर हिंसा। जितना राग द्वेष मेरे जीवन में होगा, मैं हिंसा से बच नहीं पाऊंगा। मैं हिंसा से बचने के लिए अपने राग द्वेष परिणाम को कम करूं, मैं प्राणी मात्र के परोपकार का भाव रखूं, मैं दूसरे के बारे में हमेशा सकारात्मक सोच रखूं, नेगेटिव थॉट्स नहीं हो मेरे भीतर, पॉजिटिव थॉट्स ही हमेशा हो, मैं भलाई सोचूं, दूसरे का बुरा क्यों सोचूं, लेकिन नहीं, पुराना हिसाब भी मैं चुकाऊंगा, ये प्रतिशोध की भावना यह भी हिंसा में मुझे ले जाती है। भैया इनडायरेक्ट बहुत प्यार से कहूं कि जितनी पहले की आपकी अदावत है, लड़ाई है, सो चार महीना बाद लड़ लियो, अब चार महीना तो गम खाए रहो, हम चले जाएंगे, फिर आपको जैसा करना हो, जैसा संसार में आप कर रहे थे, आपको संसार बनाना हो सो बढ़ाते रहना। इनडायरेक्ट तो इतना ही कहेंगे हम। धर्म ध्यान हमारे माध्यम से आप भी कर सके और प्राणी मात्र को धर्म ध्यान हो सके, ऐसा अपन को प्रयत्न करना चाहिए। हम अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे हैं मान लो, तो कम से कम जो लोग अहिंसा के लिए पालन करने के उत्सुक हैं, उनको तो हम कम से कम अहिंसा के पालन में बाधा ना डालें, कम से कम ऐसी हिंसा तो ना करें जिससे कि दूसरे को अहिंसा करने, धर्म के पालन करने में बाधा होने लगे। थोड़ा सा विचार करके अपन अपने जीवन में अहिंसा लाने का प्रयास कर सकते हैं। अपन पढ़े लिखे हैं, अपन सब समझते हैं, लेकिन क्या करें, अनादिकालीन कषायें और मिथ्यात्व की वजह से सारा पढ़ा लिखापन, सारी होशियारी, सारी चतुराई एक तरफ चली जाती है और हम कषाय में लग जाते हैं, भूल जाते हैं उस समय अपना ज्ञान जो अर्जित किया है, काहे के लिए किया था, मैंने कषायों की मंदता के लिए ज्ञान अर्जित किया था या कषाय बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए मैंने क्या पढ़ा था, ये विचार करें अगर अपन, तो अपने जीवन में आराम से अहिंसा का भाव आ सकता है, कोई ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक करता है भोगते अनोख है, अपन ने सुना तो यही था कि नहीं जो कोई करे वो को भोगने पड़े, लेकिन जी तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतसर स्वामी अहिंसा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि हिंसा करता एक है और उसका फल अनेक लोग भोगते हैं, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। देख लो बहुत सीधी सी बात है, बाहर कहीं हुजूम लगे हुए काहुर पक्षियों को लड़वा रहे हैं आपस में, सब जने खड़े देख रहे हैं, कर तो रहा है एक लेकिन समर्थन कर रहे हैं सब, भीड़ लगा करके सबके पाप का बंद हो रहा, निष्क्रिय पाप, सबको हिंसा का दोष लग रहा, कर एक रहा है, भोगेंगे जब फल, तो अनेक लोग जो जो उसमें सम्मिलित थे वो सब इस तरह भी अपन कैसे हिंसा में चले जाते हैं अज्ञानता से, ये विचार करना चाहिए। इतना ही नहीं, एक करते अनेक हैं और भोगता एक है, ऐसा भी है, जैसे कि दूल्हा राजा, सब कुछ शादी ब्याह का इंतजाम कौन कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मत्थे किसका आएगा, जो उसका आनंद ले रहा है, मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, अच्छा इंतजाम करो, ये कई बार तो ब्याह होने हैं हमारा, कौन भीड़ भीड़ा होने, इसलिए अच्छे से अच्छा जितने पंचेंद्री के विषय हो सके उतने ले आओ, जितना परिग्रह जोड़ सको जोड़ो, जितना हिंसा कर सको उतना करो, बढ़िया से बढ़िया लगना चाहिए, 2-4 लाख रुपए लग जाए कोई बात नहीं, पंडाल लगवा बढ़िया। इस तरह अपन अपने विचार ही नहीं करते हैं कि किस चीज का समर्थन कर रहे हैं, हम धर्म का समर्थन कर रहे हैं या हिंसा और पापों का समर्थन कर रहे हैं, जो कर रहा है उसे ही सारा फल अधिक मात्रा में मिलना है, जिसके निमित्त से किया जा रहा है थोड़ा बहुत जो लोग भी लगे हुए हैं काम में, वो तो उनके द्वारा जो भी थोड़ा अपराध हुआ है करना पड़ रहा है, अब लड़के का ब्याह है इसलिए अपन भी करो, लेकिन मजा कौन ले रहा है, मेरा ब्याह हो रहा है, मेरे लिए सारा इंतजाम हो रहा है, सारा फल उस व्यक्ति के जिम्मे जाएगा, भावों की परिणति बड़ी विचित्र है, विचार करना चाहिए कि क्षण भर को मेरे विचार अगर खराब हुए तो उसी क्षण अत्यधिक कर्म का बंध मेरे लिए हो जाएगा, ऐसा विचार करके अपने परिणामों को हमेशा सावधान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, करे कम तो भोगे ज्यादा, ऐसा भी होता है। बाहर से दिखने में जरूर कम लग रहा है, लेकिन भीतर से तो बहुत आशक्ति पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो फल भी ज्यादा ही भोगना पड़ेगा। जैसे कि आपको बताऊं एक छोटा सा उदाहरण गुना का। मैं गुना चतुर्मास के लिए 4 दिन पहले पहुंचा और मुझे समाचार किसी ने दिया कि महाराज 8-10 दिन हो गए, बड़ी दुखद घटना है। बेटा बहुत होशियार था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। 94% जिसके थे बी में, और ब्रिलियंट है, सब कुछ है, ज्ञानवान है आज के भौतिक ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक सोच नहीं पा रहे, घर के लोगों से इतना प्यार था, सब कुछ था, किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि कारण क्या था। हमें भी लगा कि हाँ भाई, पर इतना जरूर है कि कुछ कार्य हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। 4 महीने गुजर गए और वो बात की कारण बन गई, वही कारण था, ये समझ में आ गया। हुआ क्या था कि इतना बड़े बढ़िया सिविल इंजीनियरिंग करके आया अपने घर के डिजाइन करने के लिए, पिता ने उसे कहा कि बेटे अब तो तुम पढ़ गए हो बी, अब अपने घर का ही प्लान कर लो, कहां किस तरह से अपने घर में किसको कहां क्या चीज बनेगी, नक्शा बना लो। तो उसने बढ़िया नक्शा बनाया और पिता के सामने सब चीजें नक्शे में बताई कि ये आपका कमरा है, ये बड़े भैया का है, ये बाहर से जो लोग गेस्ट आएंगे उनके लिए है, ये बैठक रूम है, सब कुछ। लेकिन उसमें अपने लिए संकोच बस उसने कोई जगह नहीं रखी थी कि मैं यहां रहूंगा, मेरा कमरा ये है। उसे ये था कि इतना प्रेम माता पिता का है तो वो तो अपने ही आप कहेंगे कि भैया तुमने सबको तो नक्शा में स्थान बनाया, अपने लिए कहां बनाओ, अपने आप कहेंगे। ऐसा उसके भीतर विचार था लेकिन किसी ने नहीं कहा। बस 2 दिन तक वो सोचता रहा कि देखो, कहते तो सब लोगों की बहुत प्यार है, लेकिन कैसा प्यार है, मैंने पूरा नक्शा बनाया घर का और उसमें सबके लिए जगह बनाई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कहां रहोगे, तुम्हारे लिए कौन सी जगह, तुम्हारा कौन सा रूम होगा। अरे भाई, जब मेरा इस घर में किसी को चिंता नहीं है तो क्या मतलब इस जीवन से। इतना निराश हो गया वो जीवन से और उसने अपने जीवन को नष्ट करने का सोच लिया और नष्ट कर भी दिया। ये कारण था, जरा सा कारण, दिखने में तो आ रहा है कि किया जरा सा है लेकिन फल बहुत बड़ा भोगना पड़ा कि प्राणों का घात हो गया। भैया, कई बार अपन बाहर से दिखने में बहुत थोड़ा सा अपराध करते हैं, कोने में बैठे हैं, बुंदेलखंड में तो कहते कि भैया भड़बड़िया से नहीं डरेइयो, घूमा आदमी से डरेइयो, चुप्पा से। चुप्पा आदमी का भरोसा नहीं, कोने में बैठा बैठा क्या गुलाब भाग लगाएगा। हाँ, जो चुपचाप मुंह पे मैंने तेजी में आकर के कह जावे, सो को ज्यादा दन नहीं है, उन्हें तो कह ही ली, लेकिन वो जो चुपचाप एकाध बार कहेगा और ऐसी बात कहेगा कि फिर बर्दाश्त करने से बाहर हो जाएगी, अपन मानते हैं। तो बाहर में दिखाई पड़ रहा कि किया कम लेकिन अंतरंग में परिणाम बहुत होने से उसका फल भी बहुत भोगना पड़ता है, और करते कम है भोगते ज्यादा है, यह भी भाव दशा का ही काम है कि अपन बाहर में तो चुपचाप ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कछु तो नहीं करत, बड़े शांत हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते, को उसने कछु ने लेने ने देने ने ऊधो को देने ने माधो को लेने है, बड़े सरल है, सज्जन आदमी है, लेकिन भीतर तो खुरापात चलती रहती है, प्लानिंग चलती रहती है। खुद नहीं करेंगे, तुम करो, उनको सलाह देंगे, उनको देंगे, अपन तो दूसरों की दृष्टि में बढ़िया बने रहेंगे, नहीं भी नहीं कर सकते ऐसो, मन उन्हीं की सलाह से बहुत उपद्रो, जब अपन को नहीं पता लगती, जब पता लगती अच्छा ऐसा, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं अपन की, कुछ भी नहीं किया इन्होंने और इतना बड़ा कार्य हो गया। इसका फल किसको भोगना पड़ेगा? जिसने किया उसे ही भोगना पड़ेगा, और ज्यादा भोगना पड़ेगा। दिखने में तो कमती आ रहा है लेकिन भाव बहुत प्रगाढ़ होने से ज्यादा फल भोगना पड़ेगा, यहां तक कि करते बाद में फल पहले भोगना पड़ेगा। ऐसा भी होता, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस काम को मैं कैसे करूं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के काम को, और निरंतर विचार कर रहे हैं और उसी विचार में प्राणांत हो गया, मरण को प्राप्त हो गए। ये स्थिति बन गई कि किया तो बाद में लेकिन भोगा फल पहले, क्योंकि विचार किया था और मरण करके और कर ही नहीं पाए उसका अहित, और उससे पहले अहित करने के विचार से अपना ही अहित हो गया। यहां तक अपन देखते हैं, और इतना ही नहीं, आखिरी बात कि कर्ता कोई है और फल कोई पाता है, ये बड़ा अजीब है। अपन तो यही सोचते हैं, है भी वैसा ही कि जो करेगा उसे ही फल मिलेगा, जिन भावों से करेगा उन भावों का फल मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे कि दूसरे से करवा दे अगर कोई व्यक्ति, तो करवाया जिससे है उसे तो कम अपराध है, लेकिन जिसने करवाया है उसे भीषण अपराध लगेगा। तो बताओ, किया तो किसी और ने और फल भोगना पड़ा किसी और को। देखने में तो यही आता है लेकिन किए थे उसी स्वयं ने भाव, इसलिए उसे ही भोगना पड़े। आपको एक घटना सुनाऊं, यहीं की, ग्वालियर की, यहां की नहीं, मुरैना की। अब जब इतने संजय है कहूं सो फिर सुने हैं सब बातें कि ऐसो ऐसो करते सब जने, इतने कहे पे तो बुरा ईमान जो रहे ने इतना ही है हम तो आपसे बुराई करके का हो रहे हैं अच्छी से। तो ग्वालियर की घटना है, वहां पर एक पत्रकार महोदय थे, वो प्रवचन में आते होंगे और उन्होंने सारी बातें सुनी, श्रद्धा पर भी हिंसा पर भी विश्वास अविश्वास पर भी। और एक दिन दोपहर में समय निकाल करके पत्रकार की हैसियत से नहीं, सामान्य श्रोता की दृष्टि से आकर के कहा, भगवान आप जो कहते हैं सही है, ऐसा ही है संसार, हमने ये अनुभव करके देख लिया, इतने बड़ी उम्र में हमें इस बात का अब एहसास हुआ, 60-70 साल निकल गए आज हमारे पास। हमने कहा हुआ क्या, कैसे आपको यह एहसास हो गया कि ऐसा ही संसार है? तो उन्होंने कहा, एक पत्र में छापने के लिए मेरे पास समाचार आया है। क्या समाचार आया? समाचार यह है, आश्चर्य होता है पढ़ करके, आपको भी होगा और मुझे तो वो समाचार जब मिला था मैं तो दंग रह गया कि ऐसा भी संसार का स्वरूप हो सकता। एक पिता ने अपनी जीवन साथी और बेटी को घर से बाहर निकाल दिया, इतना ही नहीं उन्होंने उसी मोहल्ले में दूसरा किराए का मकान लेकर के रहने का इंतजाम कर लिया, तो उनका नल और बिजली कटवा दिया, इतना प्रतिशोध। महाराज यहां तक तो पानी अभी सिर से ऊपर नहीं हुआ था, लेकिन समाचार यह है कि उस पिता ने अपनी बेटी और अपनी जीवन साथी के चरित्र के हनन के लिए उसके घर पर गुंडे भिजवा दिए। अब बताइए, अब क्या रहा, क्या संबंध रहे? ये पढ़ करके, ये खबर छाप करके मैं तो सोच रहा हूं कि मुझे भी संसार से विरक्त हो जाना चाहिए और अपने आत्म कल्याण के लिए निकल जाना चाहिए। महाराज इसमें मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जिसे कहा है कि तुम उनके चरित्र को नष्ट करो उसे पाप लगेगा, जिसने करवाया है उसे पाप लगेगा। मैंने कहा बहुत स्पष्ट है, जो करेगा उसे तो थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने तो मजबूरी में पैसे के लालच में और ये कार्य करने का संकल्प लिया है, लेकिन जिसने करवाया है उसको कितना फल भोगना पड़ेगा ये स्वयं विचार करे। वो भाई अज्ञानतावश अपन भी कर
कर लेते हैं, अपराध करवा लेते हैं, कोई अपराध करता है तो उसकी प्रशंसा करके मन ही मन खुश हो लेते हैं और ऐसे अपन भी उस हिंसा में शामिल हो जाते हैं। सोचते तो यह है कि हमने कहां किया दिन भर में अपराध, लेकिन हमारे द्वारा अज्ञानतावश कितना अपराध हो जाता है, अनावश्यक रूप से हम उस हिंसा में शामिल हो जाते हैं। इससे अपने परिणाम बचाना चाहिए और अपने आप के जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर सजग सावधान होकर के प्रयत्न करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। यदि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
के गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जो जग चित अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते वर्षा के समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की गड़ियों में
के ज्ञान से सूझे लोकालोक सदा के।